ਬਾਣੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ 18 ਸ਼ਬਦ 6 ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹੇ ਕਰੋ ਤੁਮ ਸੋਈ ਮਨ ਕੇ ਕਹੇ ਚਲੋ ਮਤ ਕੋਈ।
आज के सत्संग के वचन हजूर महाराज जी द्वारा फरमाए गए सत्संग के हिंदी अनुवाद पर आधारित हैं। ये हजूर स्वामी जी महाराज की वाणी है। इस शब्द में आप संतमत के बारे में हर पहलू से खोलकर समझा रहे हैं। आप फरमाते हैं कि हर एक को परमात्मा की खोज है। हम दुनिया के सब जीव उस परमात्मा से मिलना चाहते हैं। हमारी आत्मा उस परमात्मा का अंश है। हम उस सतनाम समुन्दर के कतरे हैं। जो जो कर्म मन के अधीन होकर करते हैं, अच्छे भी करते हैं बुरे भी करते हैं, उन सब का नतीजा भोगने के लिए सबको बार बार 84 के जेल खाने में आना पड़ता है। इन कर्मों के कारण जिस जगह जाकर जन्म लेते हैं उसी जामे के अंदर दुख और मुसीबतें सहनी पड़ती हैं। जब तक मालिक की भक्ति करके मालिक से मिलाप नहीं करेंगे, देह के बंधनों से मरण जन्म के दुखों से कभी किसी हालत में छुटकारा नहीं हो सकेगा। इसलिए हम अपनी बुद्धि के अनुसार हजारों युक्तियों द्वारा हजारों जगह जाकर उस परमात्मा की खोज करते हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं, जप तप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, मंदिरों मस्जिदों गुरुद्वारों में जाते हैं, महात्मा के सत्संग सुनते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, तीर्थ स्थानों पर जाकर स्नान करते हैं। ये सब साधन केवल परमात्मा से मिलने के लिए ही करते हैं। स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि उस परमात्मा को अपनी भक्ति प्यारी है, अपना प्यार प्यारा है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा का जो रिश्ता है वह केवल भक्ति या प्यार का रिश्ता है। आम संतों महात्माओं ने इसे स्त्री और पति का रिश्ता कहकर याद किया है। रामाकृष्णा मिशन वालों ने इसको माता और बेटे का रिश्ता कहकर याद किया है। हजरत ईसा ने इसको पिता और पुत्र का रिश्ता कहकर याद किया है। इन सब रिश्तों को जोड़ने वाली चीज भक्ति या प्रेम है। स्वामी जी महाराज भी कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा का रिश्ता केवल भक्ति का रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है। इसलिए पलटू साहब ने कहा था, साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। यानी अगर आप परमात्मा के घर जाना चाहते हैं, केवल आपको भक्ति की जरूरत है, प्यार की जरूरत है। गुरु घर की वाणी है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जो मालिक से प्यार करते हैं उनको ही गौरव प्राप्त होगा कि वह वापस जाकर परमात्मा से मिल सकें। दादू साहब ने भी समझाया था, इश्क अल्लाह की जात है, इश्क अल्लाह का अंग। अगर कोई परमात्मा का नाम है वह प्रेम है, इश्क है। अगर उसकी कोई जाति पाती है, कौम या मजहब है, तो वह भी इश्क है, प्रेम है। बाइबल में आता है, परमात्मा प्रेम है, प्रेम ही परमात्मा है। यानी मालिक का असली रूप केवल प्रेम है। हजरत ईसा समझाते हैं, वह लोग भाग्यशाली हैं जिनके अंदर मालिक से मिलने की विरह है, तड़प है, प्रेम है, क्योंकि उनको ही परमात्मा की गोद में पहुंचकर सच्चा आराम प्राप्त होगा। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि उस मालिक को तो केवल अपनी भक्ति प्यारी है, अपना प्यार प्यारा है। मन में ख्याल आता है कि जिस परमात्मा को हमने कभी देखा नहीं, जिसका पता नहीं कि वह कहाँ रहता है, उस परमात्मा से हमारा प्यार किस तरह पैदा हो सकता है, हम उसकी भक्ति किस तरह कर सकते हैं। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, वर्ण जात चहन नहीं कोए, सब हुक्म सृष्ट उपायंदा। जिस परमात्मा ने अपने हुक्म के जरिए सारी सृष्टि की रचना की है, वह ना काला है, ना वह गोरा है, ना वह हिंदू है, ना वह मुसलमान है, ना वह ईसाई है, ना वह हिंदुस्तान का रहने वाला है, ना अमरीका अफ्रीका का रहने वाला है। वह किसी भी वर्ण किसी भी रंग रूप जाति पाति में नहीं आता। ये जितने भी दुनिया के इंसान हैं चार वर्णों में आ जाते हैं, लेकिन वह परमात्मा किसी वर्ण के अंदर नहीं आता। परमात्मा की शक्ल का पता नहीं और ये भी पता नहीं कि वह परमात्मा रहता किस जगह है। आप सोचें, उससे हमारा प्यार किस तरह पैदा हो सकता है। इस पर विचार करने के लिए हम सारी सृष्टि को आंखों के आगे रखकर देखते हैं। हम क्या देखते हैं कि सारी दुनिया की चीजें पांच तत्वों की बनी हुई हैं। पृथ्वी है, पानी है, अग्नि है, हवा है, आकाश है। हर चीज के अंदर कोई न कोई तत्व होता है। वनस्पति जगत में पानी का तत्व होता है। दूसरे प्रकार के जीव कीड़े मकौड़े, सांप, बिच्छू वगैरह हैं। इनके अंदर पृथ्वी का और अग्नि का तत्व होता है। पक्षियों में तीन तत्व हैं। चौपाए जानवरों में चार तत्व हैं। इंसान के अंदर पांच तत्व हैं। बाकी सारे तत्वों वाले जीव इंसान से नीचे हैं। इंसान इंसान की भक्ति करे तो क्यों करे, क्योंकि हर इंसान के अंदर पांच तत्व एक जैसे हैं। इसलिए हम सोच में पड़ जाते हैं कि दुनिया में किसका प्यार हमारे अंदर मालिक का प्यार पैदा कर सकता है। हजूर महाराज जी बड़ी सुंदर मिसाल दिया करते थे कि अगर एक कमरे में बहुत से रेडियो रख दिए जाएं, जिनका संबंध बिजली या बैटरी से ना हो, तो हम कभी किसी मुल्क की खबरें नहीं सुन सकते। अगर उनका कनेक्शन बिजली या बैटरी से कर दें तो हम जिस मुल्क की चाहें खबरें सुन सकते हैं। हमें उन मालिक के भक्तों और प्यारों की संगत करनी है जिनकी लिव, जिनका ख्याल मालिक से जुड़ा हुआ है। हम उनकी संगत करते हैं, या ये कह लें कि उनकी भक्ति करते हैं, ताकि उनके प्यार के जरिए हमारा प्यार उस परमात्मा से हो जाए। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, हर का सेवक सो हर जेहा, पेद न जानो मानस देहा। मालिक के भगत और प्यारे मालिक की भक्ति करके मालिक का रूप हो जाते हैं। उनमें और परमात्मा में कोई भी भिन्न और भेद नहीं होता। उनका परमात्मा से क्या संबंध है? गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, ज्यो जल तरंग उठे बहु पाती, फिर सल्ले सलल समाएंदा। जिस तरह समुन्द्र में दो चार मिनट के लिए एक लहर उठती है, फिर वह लहर समुद्र में ही समा जाती है। इसी तरह जो संत महात्मा हैं, वह सतनाम समुद्र की लहरें होते हैं। वह शब्द या नाम से ही आते हैं, शब्द या नाम का ही होका देते हैं और वापस जाकर शब्द या नाम में ही समा जाते हैं। लहर समुद्र से अलग कभी नहीं की जा सकती, वह समुद्र का हिस्सा ही होती है। इसी तरह संत महात्मा परमात्मा से अलग नहीं किए जा सकते, वे यहाँ होते हुए भी परमात्मा का हिस्सा होते हैं। हम उनकी भक्ति करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, ताकि उनकी भक्ति और उनके प्यार के जरिए हम भी वापस जाकर परमात्मा में समा जाएं। यहाँ स्वामी जी महाराज प्यार से समझाते हैं कि जो कुछ महात्मा आपको उस मालिक की भक्ति करने का तरीका और साधन समझाते हैं, आप उस तरीके से परमात्मा की भक्ति करें, मालिक से प्यार करें। मालिक के भक्तों और प्यारों की बताई गई युक्ति के जरिए ही आप मालिक से प्यार कर सकेंगे, और इस भक्ति के जरिए ही आप अपने अंदर मालिक का प्यार पैदा कर सकेंगे, और इस भक्ति के जरिए ही आप वापस जाकर परमात्मा से मिल सकेंगे। अब विचार करने योग्य बात है कि अगर हमें गुरुमुखों की जरूरत है, तो ऐसे गुरुमुखों की जरूरत है जो हमारे जैसे और हमारे सत्र पर हों, हमारी तरह देदारी हों। जो सैकड़ों साल पहले महात्मा आए थे, वह बहुत उच्च कोटि के महात्मा थे, लेकिन वह वापस जाकर परमात्मा में समा गए। वह हमसे उतनी ही दूर जा चुके हैं जितनी दूर वह परमात्मा है। हमें महात्मा की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हम सीधे परमात्मा से प्यार नहीं कर सकते, महात्मा के जरिए ही परमात्मा से प्यार कर सकते हैं। जिस महात्मा को हमने कभी देखा नहीं, जिस महात्मा की हमें शक्ल का पता नहीं, रंग रूप का पता नहीं, उस महात्मा से हमारा प्यार किस तरह हो सकता है? वह महात्मा हमारे लिए उसी तरह है जिस तरह हमारे लिए परमात्मा है। अगर हम पहले हो चुके महात्मा से प्यार करना चाहते हैं, जिनकी हमने कभी शक्ल नहीं देखी, तो हम सीधे परमात्मा से प्यार क्यों नहीं कर लेते? इसलिए देहधारी महात्मा की संगत करनी पड़ती है, क्योंकि वह हमारे जैसे होते हैं, हमारे सत्र पर होते हैं और परमात्मा के सत्र पर भी होते हैं। आप देखें, इंसान का उस्ताद इंसान ही हो सकता है। या तो हमें गुरुमुखों की जरूरत ही नहीं है, अगर है तो वह देहधारी ही हो सकते हैं। जो महात्मा सैकड़ों साल पहले हमें छोड़कर जा चुके हैं, वह हमारा काम नहीं कर सकते। इसलिए हमें देहधारी महात्मा की, देहधारी गुरु की जरूरत पड़ती है, ताकि उनके प्रेम प्यार के जरिए हमारा परमात्मा से भी प्रेम प्यार पैदा हो जाए। इसलिए गुरु अमरदास जी ने कहा था, सतगुर ते हर पाइये पाई। भाई, जब भी तू परमात्मा को पा सकता है, सतगुरु के जरिए, गुरुमुखों के जरिए पा सकता है। यहाँ मन बुद्धि काम नहीं देती, अकल काम नहीं देती। दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं है जो हमें उस्ताद के बगैर आती हो। जब जन्म लेते हैं, पहले हमारी माता हमारी उस्ताद बनती है। वह हमें जन्म ही नहीं देती, लेटना सिखाती है, बैठना सिखाती है, खड़े होना सिखाती है, चलना सिखाती है, बोलना सिखाती है। फिर हमारा पिता उस्ताद बनता है। वह उंगली पकड़कर हमें घर से बाहर ले जाता है, स्कूलों कॉलेजों में दाखिल करता है, हर तरह की हमारी सहायता और मार्गदर्शन करता है। फिर स्कूलों कॉलेजों में हमें किस किस चोटी के कितने कितने उस्ताद मिलते हैं, इंजीनियर मिलते हैं, डॉक्टर मिलते हैं, बड़े बड़े विद्वान मिलते हैं। तब कहीं हम दुनिया में पैरों पर खड़े होने के काबिल बनते हैं। रूहानियत का मसला तो इतना उलझा हुआ है कि गुरुमुखों की संगत और सोबत के बिना हमें अंदर एक कदम भी चलना मुश्किल हो जाता है। गुरु अर्जन देव जी की वाणी में प्रश्न आता है, किन बिद मिले गुसाई मेरे राम राये। आप स्वयं ही उत्तर देते हैं, कोई ऐसा संत सहज सुखदाता मुहे मारक दे बताई। कोई ऐसा महात्मा मिल जाए जिसको सहज अवस्था प्राप्त हुई हो, मालिक की भक्ति से सुखों का दाता बनकर आया हो, वह हमें मालिक की भक्ति करने का तरीका बता दे, साधन बता दे, फिर ही हम मालिक की भक्ति में कामयाब हो सकते हैं। इसलिए वाणी में कई जगह अपना गुरु आता है। हमें जो कुछ भी मिलेगा अपने गुरु के द्वारा मिलेगा। इसलिए गुरु अमरदास जी ने कहा था, संतो गुरुमुख पूरा पाई, नामो पूज कराई। भाई, मालिक का कोई भगत मिल जाए, प्यारा मिल जाए, वह मालिक की भक्ति करने का तरीका और साधन समझा दे, तब तू मालिक की भक्ति कर सकता है, मालिक की पूजा कर सकता है। अपने आप अपनी अकल से ग्रंथ पोथियां पढ़कर तू कभी मालिक की भक्ति में कामयाब नहीं हो सकता। गुरुमुख क्या समझाते हैं? वह सबसे पहले ये बताते हैं कि जिस परमात्मा से आप मिलना चाहते हैं, वह आपको कहीं बाहर नहीं मिलेगा, वह आपके शरीर के अंदर बैठा हुआ है, वह आपकी देह और वजूद के अंदर बैठा हुआ है। जिसको मिला है अपने अंदर से मिला है, जिसको मिलेगा अपने अंदर ही मिलेगा। गुरु अमरदास जी कहते हैं, गुरुमुख होवे सो काया खोजे, होर सब परम पुलाई। जो मालिक के आशिक हैं, भगत हैं, प्यारे हैं, वह हमेशा देह या शरीर के अंदर जाकर मालिक की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, खोज करते हैं। बाकी सब दुनिया के जीव वहमों भरमों में फंसकर यहीं दिन रात भटकते फिरते हैं। किसी महात्मा की वाणी पढ़कर देख लें, हर एक महात्मा यही उपदेश करता है कि परमात्मा आपको ईंटों पत्थरों में नहीं मिलेगा, पानी में नहीं मिलेगा, सरोवरों में नहीं मिलेगा। वह हिमालय के पीछे नहीं छुपा हुआ, वह आसमान के पीछे नहीं सोया हुआ, वह हमारे शरीर के अंदर बैठा हुआ है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, काया अंदर आपे वसे, अलख न लख्या जाई, मनमुख मुगद बुझे नाही, बाहर पालन जाई। वह परमात्मा हमारे शरीर के अंदर बैठा हुआ है। हम दुनिया के जीव इतने मनमुख हैं, मुगद हैं, गवार हैं कि उस परमात्मा को दिन रात बाहर ढूंढने में लगे हुए हैं। हजरत ईसा ने कहा था, जो कुछ पिछले जन्मों में कर्म इकट्ठे कर बैठे हो, उनका पश्चाताप करो, उनका हिसाब किताब खत्म करो, परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, वह तुम्हारे शरीर के अंदर बैठा हुआ है। महात्मा समझाते हैं कि हमारा रूहानी सफर पैरों के तलवों से लेकर सिर की चोटी तक है। उस सफर की दो मंजिलें हैं, एक आंखों तक है, दूसरी आंखों से ऊपर है। शरीर के अंदर जो रूह और मन की जगह है, वह हर एक की आंखों के पीछे है। कोई इसको शिव नेत्र कहता है, कोई दिव्य चक्षु कहता है, कोई घर दर कहता है, कोई मुक्ति का दरवाजा कहता है, कोई नुक्ताए सफेदा कहता है और कोई एक आंख या तीसरी आंख कहता है। हमारा ख्याल आंखों के पीछे इस नुक्ते या बिंदु से उतरकर इन नौ द्वारों के जरिए सारी दुनिया में फैल जाता है। यहाँ बैठे हमें कभी बाल बच्चों का ख्याल आता है, कभी घर के कारोबार का ख्याल आता है, कभी दुकान के ग्राहकों का ख्याल आता है। मन कभी किसी का टिककर नहीं बैठता, किसी न किसी चीज की सोच और विचार में ही सारा दिन लगे रहते हैं। जो हमारे मन को सारा दिन सोच और विचार करने की आदत पैदा हो चुकी है, इसको महात्मा सिमरन करना कहते हैं। सिमरन करने की सबको कुदरती आदत पैदा हो चुकी है। कितनी अंधेरी कोठरियों में अंदर बैठ जाएं, हम वहां नहीं होंगे, हमारा मन सारी दुनिया के अंदर फैला हुआ होगा। जिसका भी हम सिमरन करते हैं उसकी शक्ल भी आंखों के आगे आ जाती है। अगर बेटे बेटियों का सिमरन करते हैं, बेटे बेटियों की शक्लें आंखों के आगे आ जाएंगी। घर के कारोबार का सिमरन करते हैं, घर के कारोबार आंखों के सामने फिरने शुरू हो जाएंगे। इसको महात्मा ध्यान करना कहते हैं। जिसका भी हम सिमरन करते हैं उसी का हम कुदरती तौर से ध्यान करना शुरू कर देते हैं। जिनका सिमरन करते हैं, ध्यान करते हैं, उनके साथ हमारा मोह पैदा हो जाता है, प्यार पैदा हो जाता है। उन शक्लों और पदार्थों से हमारा इतना मोह या प्यार पैदा हो जाता है कि सपने भी हमें रात को उनके ही आते हैं। उनकी ही शक्लें सिनेमे की स्क्रीन की तरह आंखों के आगे आ जाती हैं। जहां आसा तहां वासा। जिस ओर आखिरी वक्त हमारा ख्याल होता है, हम दुनिया के जीव उसी रौ में बहना शुरू कर देते हैं। कौन सी चीज हमें बार बार देह के बंधनों में लाई? दुनिया का मोह या प्यार लाया। किसने पैदा किया? सिमरन और ध्यान ने पैदा किया। किन चीजों के सिमरन और ध्यान ने? इस रचना की शक्लों और पदार्थों के सिमरन और ध्यान ने, जिन्हें नाश हो जाना है, फना हो जाना है। महात्मा कहते हैं, सिमरन और ध्यान की तो कुदरती आदत डाले हुए हो, मन की इस आदत से फायदा उठाओ। सिमरन को सिमरन काटेगा, ध्यान को ध्यान काटेगा, लेकिन तुम उस चीज का सिमरन करो, उस चीज का ध्यान करो जिसे कभी नाश नहीं होना, जिसे कभी फना नहीं होना। वह क्या है? केवल एक परमात्मा है, परमेश्वर है। इसलिए मालिक के भगत और प्यारे हमें उस मालिक के नाम का सिमरन करने का तरीका बताते हैं। हमें उस सिमरन के जरिए ख्याल को नौ द्वारों में से समेटकर आंखों के पीछे इकट्ठा करना है और गुरुमुखों के स्वरूप का ध्यान करके ख्याल को आंखों के पीछे ठहराना है। गुरुमुखों के स्वरूप का ध्यान क्यों करना है? क्योंकि उनका असली स्वरूप शब्द होता है, उनका असली स्वरूप नाम होता है और हम उस शब्द में जाकर समाना चाहते हैं। अगर और किसी का ध्यान करेंगे तो उसके साथ हमारा प्यार पैदा हो जाएगा, उसका प्यार हमें देह के बंधनों की ओर खींच कर ले जाएगा। गुरुमुखों को वापस जाकर सतनाम समुद्र में समा जाना है। उनके प्यार के बधे हुए हम भी सतनाम समुद्र में समा जाते हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज ने कहा था, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छुटना। गुरु अर्जन देव जी ने कहा था, गुर की मूरत मन में ध्यान। गुरुमुखों के स्वरूप को अपने मन में रखना है। जब सिमरन और ध्यान के जरिए ख्याल आंखों के पीछे इकट्ठा होकर अंदर ठहर जाता है, हमें अपने आप अंदर पता लगना शुरू हो जाता है कि वह मीठी से मीठी, सुरीली से सुरीली आवाज जो मालिक की दरगाह से आ रही है, वह हर एक के अंदर आंखों के पीछे धुनकारें दे रही है। वह चोरों के अंदर भी है, ठगों के अंदर भी है, साधुओं संतों महात्माओं के अंदर भी है। वहां किसी कौम का, मुल्क का, मजहब का सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई हिंदू होकर अंदर जाए, सिख ईसाई होकर अंदर जाए, जो खुशकिस्मत भाग्यशाली आंखों के पीछे ख्याल को इकट्ठा करता है, वह अपने अंदर उस शब्द की धुनकार धुनों को सुनना शुरू कर देता है। उसी ताकत को ऋषियों मुनियों ने राम नाम कहा है, आकाशवाणी कहा है, रामधुन कहा है, निर्मल नाद कहा है, दिव्य ध्वनि कहकर याद किया है। उसी को मुसलमान फकीरों ने कलामे इलाही, निदाए सुल्तानी कहकर याद किया है। गुरु घर ने उसको धुन कहकर याद किया है, शब्द की धुनकार धुन कहकर बयान किया है, निर्मल नाद कहकर बयान किया है। वह जो चीज है वह सबकी आंखों के पीछे धुनकारें दे रही है। उसको हजरत ईसा ने वर्ड कह दिया है, लोगास कह दिया है, होली घोष कह दिया है। हमारा लफ्जों से कोई वाद विवाद नहीं है, हमें तो अपने शरीर के अंदर उस नुक्ते पर ख्याल को इकट्ठा करना है जहां हम अपने ख्याल को उस शब्द या नाम से जोड़ सकते हैं। उस शब्द या नाम के अंदर आवाज भी है, ज्योति या प्रकाश भी है। हम उस आवाज के जरिए अपने अंदर उस घर की दिशा कायम कर लेते हैं, उस प्रकाश के जरिए अपने अंदर वह रूहानी सफर तय करना शुरू कर देते हैं, फिर हम मंजिल दर मंजिल घर वापस पहुंच जाते हैं। किसी भी महात्मा की वाणी पढ़कर देखें, हर एक महात्मा उस शब्द की आवाज का भी जिक्र करता है, शब्द की ज्योति, शब्द के प्रकाश का भी जिक्र करता है। पलटू साहब कहते हैं, निकसै एक आवाज चिराग की ज्योति ही माहें, ज्ञान समाधि सुने और को सुनता नाहें। जो गुरुमुखों की शिक्षा के अनुसार समाधि लगाते हैं, मतलब सिमरन और ध्यान के जरिए आंखों के पीछे ख्याल इकट्ठा करते हैं, वह अपने अंदर उस ज्योति के भी दर्शन करते हैं, उस चिराग के भी दर्शन करते हैं, और जो वहां से मीठी प्यारी आवाज उठती है उसको भी अपने अंदर सुनना शुरू कर देते हैं। यही गुरु नानक साहब कहते हैं, अंतर ज्योत निरंतर बाणी साचे साहेब स्यों लिवलाई। सबके अंदर आंखों के पीछे ज्योति जलती है, उसके अंदर वाणी की मीठी आवाज उठ रही है, साचे साहेब स्यों लिवलाई। अगर आप अंदर उस ज्योति के दर्शन करने शुरू कर देंगे, उस वाणी की आवाज को अंदर सुनना शुरू कर देंगे, इससे आपका झूठी रचना से झूठा मोह, झूठा प्यार निकल जाएगा। सच्चे परमात्मा का सच्चा मोह, सच्चा प्यार पैदा हो जाएगा। यहाँ स्वामी जी महाराज कहते हैं कि तुम मन के पीछे लगकर मालिक की भक्ति मत करो, गुरुमुखों के पीछे लगकर मालिक की भक्ति करो। मन क्या करता है, हमें महात्मा के बताए हुए उपदेश पर चलने नहीं देता। कभी उनकी खड़ाओं की पूजा में लगा देता है, कभी उनकी समाधियों की पूजा में लगा देता है, कभी हम उनके बुत या मूर्ति बनाकर माथे टेकने शुरू कर देते हैं, कभी उनकी तस्वीरों पर फूलों के हार चढ़ाना शुरू कर देते हैं, कभी उनकी यादों में कई प्रकार के भवन बनाकर उनके आसपास चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं, कभी वहां सरोवर बना लेते हैं और वहां स्नान करना ही मुक्ति समझकर बैठ जाते हैं। गुरु अमरदास जी खबरदार करते हैं, पूजा करें सब लोग संतो, मन मुक्ताए न पाई। हम सब जीव परमात्मा की भक्ति तो अपनी अपनी अकल के अनुसार करते हैं, लेकिन हम मन के पीछे लगकर मालिक की भक्ति करते हैं। ये भक्ति हमें कभी हमारे ठिकाने पर नहीं पहुंचा सकती। मन नहीं चाहता कि कोई जीव काल के दायरे से निकलकर मालिक के साथ मिलाप कर सके। मन हमें बाहर मुखी साधनों में फंसा देगा, ग्रंथों पोथियों को पढ़ने पढ़ाने में लगा देगा, सरोवरों के स्नान में लगा देगा, तीर्थ यात्रा में लगा देगा और साधनों में फंसा देगा। इसलिए गुरु अमरदास जी कहते हैं, पूजा करें पर विद नहीं जाने, दूजे पाए मल लाई। हम भक्ति करते हैं, सच्चे दिल से मालिक से मिलना चाहते हैं, लेकिन हमें भक्ति करने का तरीका नहीं आता, साधन नहीं आता, गलत रास्ते पर चलकर पापों के बोझ को और भी इकट्ठा करके बैठ जाते हैं। गुरु रामदास जी ने कहा था, कर रतन लाल बहुमानक लादे, मन परम्या लह न सकाइए। हमारे घर या शरीर के अंदर परमात्मा ने बेशुमार नाम के खजाने रखे हुए हैं, लेकिन हमारा मन हमें अंदर जाने ही नहीं देता, ये हमें बाहर ही बाहर भटकाता रहता है। हम मालिक के भक्तों के उपदेश पर चलने की बजाय उल्टे शरीयत के कैदी होकर उन महात्माओं की तलीम को कभी कौम की शक्ल दे देते हैं, महजब की शक्ल दे देते हैं, मुल्क की शक्ल दे देते हैं। क्या नतीजा होता है, एक दूसरे से लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं, बजाय इसके के महात्मा के उपदेश से अपने आप को बांधें, हम उनके मंदिरों मस्जिदों गुरुद्वारों सत्संग घरों से अपने आप को बांध लेते हैं। उनसे प्यार पैदा हो जाता है, महात्मा के उपदेश से कोई प्यार नहीं करता। महात्मा का उपदेश किस और खींच कर ले जा रहा है और हम किस और चले जा रहे हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, मन के कहे चलो मत कोई। अगर आप मन के पीछे लगकर भक्ति करेंगे, आप कभी अपने ठिकाने पर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि मन चाहता ही नहीं कि जीव उसके दायरे से निकलकर वापस जाकर परमात्मा से मिल सके।
यह भो में गोते दिल वावे सत गुरु से बेमुख करवावे।
स्वामी जी महाराज खबरदार करते हैं कि हमारा मन इंद्रियों के भोगों का, विषय विकारों का, शराबों कबाबों का, बेटे बेटियों का, दुनिया की धन दौलत का, दुनिया की मान बढ़ाई का आशिक है। जो जो कर्म हम मन के अधीन होकर करते हैं, अच्छे भी करते हैं, बुरे भी करते हैं, उन सब का नतीजा भोगने के लिए हमें फिर इस 84 के जेल खाने में आना पड़ता है। ना अच्छे कर्मों के कारण कोई देह के बंधनों से आजाद हो सकता है, ना बुरे कर्मों के कारण मरण जन्म के दुखों से बच सकता है। जो हम दिन रात इच्छाएं करते हैं, तृष्णाएं करते हैं, वह पूरी नहीं होती। उनको पूरा करने के लिए परमात्मा हमें फिर इस 84 में भेज देता है और वहां जन्म देता है जहां उस इच्छा या तृष्णा को अच्छी तरह पूरा किया जा सके। गुरु नानक देव जी सावधान करते हैं, देंदा दे लेंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाही खाहे। परमात्मा देते देते नहीं थकता, हम लेते लेते थक जाते हैं। हम युगों युगों से लंबी लंबी अरदासें करके मालिक से मांगते चले आ रहे हैं। वह दाता हमारी इच्छाएं तृष्णाएं पूरी करता चला आ रहा है, जिसका नतीजा क्या है? आज हम इस 84 के जेल खाने में बैठे हुए हैं। जब तक हम मालिक से मालिक को नहीं मांगेंगे, तब तक हम मालिक के साथ किस तरह मिल सकते हैं? हम मालिक को हवा समझकर मालिक की भक्ति करने में लगे हुए हैं, फिर हम मालिक की भक्ति में कामयाब किस तरह हो सकते हैं? स्वामी जी महाराज कहते हैं, अगर हम गुरुमुखों की संगत में भी आते हैं तो दुनिया की इच्छाएं लेकर आते हैं, वह इच्छाएं पूरी नहीं होती, मन में अभाव आ जाता है, उनकी संगत ही छोड़ जाते हैं। उन्होंने तो हमें वही चीज देनी है जिसको पाकर इस माया से, इस रचना से हमारा प्यार निकले, मालिक से हमारा मोह या प्यार पैदा हो। हम कितने ही रोते पीटते रहें, उन्होंने वह चीजें नहीं देनी जिनको पाकर हम मालिक को ही भूल कर बैठ जाएं। इसलिए आप फरमाते हैं कि हमारा मन हमें गुरमुखों से भी बेमुख करवा देता है, उनकी संगत और सोबत से भी दूर ले जाता है। गुरु अमरदास जी ने कहा था, बिन बोलिया सब किछ जानदा, किस आगे की चय अरदास। जिसके आगे तुम लंबी लंबी अरदासें कर रहे हो, उसको अरदासों की जरूरत नहीं है। क्या उस मालिक को पता नहीं कि हमें किस चीज की जरूरत है? हमें कहने की जरूरत नहीं कि वह क्या कुछ दे। जो चीजें उसे देनी होंगी हमारे फायदे में होंगी, वह हमें अपने आप ही बख्श देगा। स्वामी जी महाराज खबरदार करते हैं कि जब तक हम कर्मों का सिलसिला खत्म नहीं करते, अपने अंदर से इच्छाएं और तृष्णाएं नहीं निकाल देते, हमारा इस काल के जाल से कभी छुटकारा हो ही नहीं सकता।
काल चक्र में डाल घुमावे मोह जाल में बहुत फंसावे।
आप समझाते हैं कि हम परमात्मा को भूलकर दिन रात दुनिया की शक्लों और पदार्थों के मोह या प्यार में फंसे हुए हैं। ये जो दुनिया से मोह किए बैठे हैं, असल में अपने गले में फंदा डाले बैठे हैं। जब गला घुटता है, फिर हम रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। उस वक़्त कौन हमारी दर्द भरी पुकार और फरियाद को सुनता है? ये दुनिया का मोह है, लगाव है, दुनिया की शक्लों और पदार्थों की तृष्णा है, जो सबको बार बार देह के बंधनों की ओर खींच कर ले आती है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, माया मोह सबो जग सोया, ए परम कहो क्यों जाई। दुनिया के सारे जीव माया के जाल में फंसकर मोह की मीठी नींद सोए हुए हैं। मालिक का किसी को पता ही नहीं, मालिक की भक्ति की तरफ किसी का ख्याल ही नहीं जाता। इन विषय विकारों, शराबों कबाबों से हमें फुर्सत ही नहीं मिलती। हम सोच लेते हैं, ये जग मीठा, अगला किन डीठा, बाबर बा ऐश कोश के आलम दोबारा नेस्त। इतना इंद्रियों के भोगों, बेटे बेटियों, कौमों मजहबों के प्यार में फंसे हुए हैं कि और तो और अपनी मौत को भी भूले बैठे हैं। रोज देख रहे हैं, हमारे साथी हमारा साथ छोड़ते जा रहे हैं। एक एक के साथ होकर खुद उनको शमशान भूमि में छोड़कर आते हैं और फिर आंखों से देखते हैं कि जिन चीजों से वह इतना प्यार किया करता था, जिनको अपना अपना कहकर इतना फख्र महसूस किया करता था, उनमें से किसी चीज ने उसका साथ नहीं दिया। फिर भी हमारे मन में यह ख्याल रह जाता है कि वह बड़ा बदकिस्मत था जो इनको साथ नहीं ले जा सका। हम शायद सब कुछ ही इकट्ठा करके अपने साथ ले जाएंगे। स्वामी जी महाराज हमें गफलत की नींद से जगाते हैं कि तुम मौत के समय को आंखों के आगे रखकर देखो, उस वक्त कौन तुम्हारी सहायता करता है, कौन तुम्हारी मदद करता है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, बिन नावे को संग न साथी, मुक्ते नाम त्यावण्या। भाई, उस नाम की कमाई के अलावा ना तो कोई चीज तेरे साथ जाएगी, ना तू कभी मुक्ति हासिल कर सकेगा, ना ही देह के बंधनों से आजाद हो सकेगा। स्वामी जी महाराज भी प्यार से समझाते हैं कि मन के हथकंडों से बचना चाहिए, ये किसी न किसी तरीके से दुनिया के मोह, दुनिया के प्यार में फंसा ही रखता है।
मित्र ना जानो बैरी पूरा, गुरु भक्ति से डारे दूरा।
आप समझाते हैं कि जिस मन को आप दोस्त समझकर बैठे हैं, अच्छी तरह विचार करके देखें, इससे बड़ा आपको दुनिया में कोई दुश्मन नहीं मिल सकता। मन किस तरह दुश्मन है? जिस दुनिया को नाश और फना हो जाना है, उस रचना को ये असल समझकर बैठा है, इस रचना के मोह में फंसा हुआ है। और जो हमारा असल है, हमारा अपना है, जो अपना बन सकता है, उसको हमें अपना बनाने नहीं देता। ये उस मालिक की तरफ कभी हमारा ध्यान जाने ही नहीं देता। फिर इससे बड़ा दुनिया में हमारा और कौन सा दुश्मन हो सकता है? मन ऐसा दुश्मन है जो हमारे अंदर बैठा हुआ है। पता नहीं इसने किस वक्त धोखा दे देना है, किस वक्त उंगलियों पर नचाना शुरू कर देना है। अगर कोई दुश्मन बाहर हो, हम उससे बचने के 100 उपाय कर सकते हैं, लेकिन ये भला मानस तो शरीर के अंदर बैठा हुआ है। कभी ये अपना बनकर गुमराह कर देता है, गलत रास्ते पर डाल देता है, कभी दोस्त बनकर गुमराह कर देता है, कभी दुश्मन बनकर डराना धमकाना शुरू कर देता है। इसलिए स्वामी जी महाराज बार बार खबरदार करते हैं कि जिस मन को तुम अपना बनाए बैठे हो, यही तुम्हारा असली दुश्मन है, ये तुम्हारा अपना बिल्कुल नहीं है।
दारासुत संपत्ति परिवारा, डारे काम क्रोध की धारा।
जिनके मोह या प्यार में मन हमें सारी उम्र लगाए रखता है, स्वामी जी महाराज उसकी असलियत समझाते हैं। ये बेटे बेटियां, रिश्तेदार, यार दोस्त, बहन भाई, जिनके लिए हम इतनी इतनी ठगियां करते हैं, जिंदगी के इतने इतने असूलों को कुर्बान करते हैं, इतनी बेईमानियां करते हैं, घर से बेघर होकर उनके लिए दुख उठाने में लगे हुए हैं, स्वामी जी महाराज कहते हैं कि इनमें से कोई तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। सब मौत के वक्त आसपास बैठे रह जाते हैं। मौत के वक्त किसी को ये भी पता नहीं चलता कि मौत के फरिश्ते आते किधर से हैं और हमें पकड़कर ले किस तरफ जाते हैं। एक दूसरे से बिछड़ने पर रोने के सिवाय और कोई हम किसी की मदद नहीं कर सकते। एक स्टेज पर आकर सारे एक्टर अपना अपना पार्ट अदा करते हैं, कोई राजा का, कोई रानी का, कोई विलेन का। जब वे स्टेज से उतर जाते हैं, ना कोई राजा होता है, ना कोई रानी होती है, ना कोई विलन होता है। महात्मा कहते हैं कि इसी तरह ये दुनिया भी एक बहुत बड़ी स्टेज है, जिस पर हम अपने अपने कर्मों के अनुसार पाठ अदा करने में लगे हुए हैं। लेकिन पाठ अदा करते करते हम भूल जाते हैं कि इनके साथ लेन देन का संबंध है, गर्जों का प्यार है। हम इनको अपना समझ बैठते हैं, अपना बनाने की कोशिश में लग जाते हैं। ये हमारे हैं नहीं, हमारे बन नहीं सकते। हम घबरा जाते हैं, रोना पीटना शुरू कर देते हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज हमें खबरदार करते हैं कि जिनको मित्र समझे बैठे हो, हमदर्द समझे बैठे हो, अपना समझे बैठे हो, इनमें से कोई भी तुम्हारा अपना नहीं है। मन और क्या करता है, काम में फंसा देता है, क्रोध में फंसा देता है। ये दो ऐसी ताकतें हैं जिनके अधीन होकर ऐसे बुरे पाप और कर्म कर बैठते हैं जिनका नतीजा भोगने के लिए हम मरण जन्म के चक्कर में पड़ जाते हैं। काम के अधीन होकर हमारा ख्याल नीचे गिरता है, क्रोध के अधीन होकर हमारा ख्याल फैलता है। जब तक ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा नहीं करते, हम अंदर कभी रूहानी सफर तय नहीं कर सकते। काम के अधीन होकर कितने बाल बच्चे पैदा हो जाते हैं, बच्चे तोड़ तोड़ कर खाते हैं, कमाई होती नहीं, वह भी दुखी रहते हैं, हम भी दुखी रहते हैं। क्रोध में आप देखें एक दूसरे की जान तक लेने के लिए जाते हैं। जब फांसी के तख्ते पर चढ़ना पड़ता है, जेलों में चक्की चलानी पड़ती है, मुकदमे भुगतने पड़ते हैं, वकीलों की झड़कें सहनी पड़ती हैं, उस वक़्त रोने पीटने का कोई फायदा नहीं होता। इसलिए स्वामी जी महाराज खबरदार करते हैं कि तुम्हें मन की बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए। मन कभी काम में फंसा देगा, कभी क्रोध में फंसा देगा, कभी बेटे बेटियों के प्यार में फंसा देगा, कभी कौमों मजहबों मुल्कों के झगड़ों में फंसा देगा, कभी दुनिया की मान बढ़ाई में फंसा देगा।
इंद्री भोग बास भर मावे, भक्ति विवेक नाश करवावे।
जो हमें भक्ति में रस आएगा, स्वाद आएगा, वह आंखों के पीछे आने पर आएगा। लेकिन हमारा ख्याल आंखों के पीछे ठहरता ही नहीं, उस अमृत को पीना चाहता ही नहीं, उस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। हमारा मन तो इंद्रियों के भोगों का गुलाम बना बैठा है। पांच ज्ञान इंद्रियां हैं, पांच कर्म इंद्रियां हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं जो इंद्री चाहती है इसको अपने घाट पर खींच कर ले जाती है। इसलिए हमें भक्ति का रस कैसे आ सकता है? वह रस तो आंखों के पीछे आकर आना था। जिस अमृत को पीकर हमें अमर होना है वह अमृत कहीं बाहर नहीं मिलता। वह अमृत तो 24 घंटे हर एक की आंखों के पीछे बरस रहा है। गुरु रामदास जी कहते हैं 9 दरवाजे 9 दर फीके, रस अमृत 10वें चुई जाए। भाई आंखों के नीचे नीचे तो इंद्रियों के भोग हैं, विषय वकारों की लजते हैं। जो रस का भरा हुआ अमृत है वह तेरी आंखों के पीछे बरस रहा है। जब तक उस नुक्ते या केंद्र पर ख्याल ही नहीं इकट्ठा करते जहां दाता दात दे रहा है, बख्शिश कर रहा है, नाम रूपी अमृत बरस रहा है, हम उस अमृत को किस तरह पिएंगे, अमर किस तरह हो सकेंगे, मरण जन्म के दुखों से छुटकारा किस तरह हासिल करेंगे, हमारे अंदर तृप्ति या शांति किस तरह आ सकती है, सुख किस तरह आ सकता है। जब तक इंद्रियों के भोगों के गुलाम बने बैठे हैं, कौमों मजहबों मुल्कों के गुलाम बने बैठे हैं, भक्ति का रस हमारे अंदर किस तरह आ सकता है? इसलिए स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि हमारा मन कभी हमारे ध्यान को अंदर की तरफ नहीं जाने देता।
सतगुरु प्रीतम मिले ना जब तक, कभी ना छूटे मन के कौतुक।
सब कुछ बयान करके फरमाते हैं कि जो मन के तरीके हैं कि हमें बाहर ही बाहर भटका कर रखना, इंद्रियों का गुलाम बना कर रखना, हमें मालिक की भक्ति की तरफ ना जाने देना और हमेशा कौमों मजहबों मुल्कों के झगड़ों में ही फंसा कर रखना, इन चीज़ों की समझ और सोझी उस वक़्त आती है जब कोई मालिक का भगत और प्यारा मिल जाता है। मालिक के भक्तों की संगत में जाकर हम जन्मों जन्मों के सोए हुए जाग उठते हैं। हमारी आंखें खुल जाती हैं कि मालिक ने भेजा किस लिए था और किस तरह मन हमें उंगलियों पर नचा रहा है। मालिक के भक्तों की संगत में जाकर पता चलता है कि मालिक ने इंसान का जामा किस लिए बख्शा था। ये जामा मालिक ने अपनी भक्ति के लिए बख्शा था, अपने प्यार के लिए बख्शा था। लेकिन हम कौमों मजहबों मुल्कों के झगड़े खड़े किए बैठे हैं। गुरमुखों की ही दया मेहर बख्शिश हो तो कहीं हम जन्म जन्म के सोए हुए जागते हैं और जिस मकसद के लिए मालिक ने इंसान का जामा दिया है उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं।
छल बल मन के कहां लाग बरनू, ऋषि मुनि कोय जाने ना मरमू।
स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि मैं तुम्हें क्या क्या समझाऊं, मन किस तरह दुनिया को दिन रात उंगलियों पर नचाने में लगा हुआ है। हजूर महाराज जी हमें ऋषियों मुनियों की कहानियां सुनाया करते थे कि कितने कितने हजार साल तप करने के बावजूद कोई किसी जगह गिर गया, कोई किसी जगह गिर गया। ये मन किस किस को धोखा नहीं देता। ये दुनिया काजल की कोठरी है। हम इसके अंदर कितनी भी अकलमंदी के साथ, होशियारी के साथ, चलाकी के साथ दाखिल हो जाएं, कोई ना कोई दाग जरूर लग जाता है। किसी ना किसी वक्त लग जाता है, हर एक को लग जाता है। मन हर एक को उंगलियों पर नचाता है, नीचे गिराने की कोशिश करता रहता है। इसलिए आप समझाते हैं कि मैं तुम्हें मन के बारे में क्या क्या बताऊं, ये कितना जबरदस्त है। गुरु साहिबान ने इसकी उपमा हाथी से दी है कि इसको मामूली ना समझो, जितना हाथी बलवान है ये हमारा मन भी हाथी की तरह बलवान है। गुरु साहब ने इसकी सांप से भी उपमा की है कि जिस तरह सांप कभी डंग मारने से बाज नहीं आता, इसी तरह आप मन को भी ये ना समझें कि आपका दोस्त है, पता नहीं इसने किस वक्त जहरीला डंक मारना है। इसकी बंदर से भी महात्मा ने तुलना की है कि जिस तरह बंदर एक जगह टिक कर नहीं बैठता, चंचल तबीयत का होता है, इसी तरह मन भी हमें एक जगह टिक कर नहीं बैठने देता, दिन रात उंगलियों पर नचाता रहता है। इसलिए प्यार से समझाते हैं कि वेद शास्त्र पढ़कर देखो, मन ने बड़े बड़े ऋषियों मुनियों तक को गिरा दिया है।
ताते सतगुरु खोजो निज के, बिन सतगुरु कोय चले ना बच के।
स्वामी जी महाराज इसलिए इतना खोल खोल कर सब कुछ समझाते हैं कि हमें पता चल जाए कि किस तरह मन हमें रात दिन उंगलियों पर नचाता है। आप कहते हैं कि मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि तुम गुरुमुखों की खोज करो, साधुओं संतों महात्माओं की खोज करो। जब तक उनकी संगत में नहीं जाओगे, ना तुम्हें मन की चालों का पता चलेगा, ना तुम्हें इसको काबू करने के तरीके का पता चलेगा। स्वामी जी महाराज कहते हैं, जिन्होंने मार मान डाला उन्हीं को सूरमा कहना। दुनिया में बड़े बड़े सूरमा हैं, बहादुर लोग हैं, जिन्होंने अपने अपने मजहब के लिए, कौम के लिए, बिरादरी के लिए, दोस्तों के लिए, प्यार के लिए जान तक कुर्बान कर दी। लेकिन स्वामी जी महाराज कहते हैं कि उनसे भी बड़ा एक सूरमा है जो अपने नफ्स पर या मन पर काबू पा लेता है। गुरु नानक साहब भी समझाते हैं, मन जीते जग जीत। भाई, अगर तू मन को जीत लेगा तो तू सारी दुनिया को बनाने वाले को ही जीत लेगा। ये मन ही तो है जो आज दुनिया में एक दूसरे को लड़ाने में लगा हुआ है। स्वामी जी महाराज प्यार से समझाते हैं कि इसको समझाने के लिए, इसको काबू करने के लिए एक ही तरीका है कि गुरुमुखों की संगत करें, साधुओं संतों महात्माओं की सोबत करें।
सतगुरु सम प्रीतम नहे कोई, मन मलीन को धोवे वो ही।
हमारा इस दुनिया में कौन अपना है? वह एक परमात्मा है, परमेश्वर है, क्योंकि हमारी आत्मा उस परमात्मा का अंश है। हम उस सतनाम समुन्द्र के कतरे हैं, लेकिन वह जो परमात्मा अपना है, मैंने शुरू में अर्ज की थी, उसे तो हमने कभी देखा नहीं, हमें उसका पता नहीं। जब हमें उसके भेजे हुए गुरुमुख मिल जाते हैं, वह हमें अपने असल की याद दिलाते हैं, अपने परमात्मा का पता बताते हैं और उससे मिलने का तरीका और साधन समझाते हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अगर दुनिया में कोई अपना है तो वह गुरमुख लोग हैं, मालिक के भगत या प्यारे हैं। वह हमें इस रचना की असलियत समझाते हैं, मन की असलियत समझाते हैं, मन को काबू करने का तरीका बताते हैं, इसे पवित्र करने का साधन समझाते हैं। उनके समझाने के अनुसार मन को काबू करके हम देह में आने का मकसद पूरा कर लेते हैं। संत सतगुरु मन को धोने का हमें क्या तरीका बताते हैं? वह कहते हैं, मन को सिमरन के जरिए धोना है, ध्यान के जरिए धोना है, सत्संग के जरिए धोना है, संगत के जरिए धोना है। जिस बर्तन के अंदर दूध डालना हो उस बर्तन को अच्छी तरह साफ करना पड़ता है। गंदे बर्तन के अंदर ना पानी डाला जाता है ना दूध डाला जाता है। जिस बर्तन के अंदर अमृत को डालना हो वह बर्तन भी अमृत रखने के काबिल होना चाहिए। सिमरन और ध्यान है, गुरुमुखों का सत्संग है, संगत और सोबत है जो हमारे मन को निर्मल करती है, हमारे मन को सीधा करती है। उनकी संगत में जाकर ही इसके अंदर अमृत आ सकता है, ये अमृत पी सकता है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, अमृत नाम महारस मीठा। वह नाम अमृत ही नहीं है, उसकी लज्जत भी बहुत मीठी है। लज्जत मीठी इसलिए कहते हैं कि अभी जो बेटे बेटियों के प्यार मीठे लगते हैं ये फीके लगने शुरू हो जाएंगे। जिनको हीरे जवाहरात मिलने शुरू हो जाएं वह कौड़ियों के पीछे दर बदर ठोकरें क्यों खाएंगे। लड़कियां गुड्डे गुड्डियों से तब तक खेलती हैं जब तक उनकी शादी नहीं होती। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जो मन को धोना है, निर्मल करना है, इसके बारे में तुम्हें केवल गुरुमुखों की संगत में जाकर पता चल सकता है।
मेरा भाग उदय हुआ भारी, सत गुरु की मैं हुई अति प्यारी।
आप समझाते हैं कि इससे ज्यादा और हम क्या भाग्यशाली हो सकते हैं, क्या खुशकिस्मत हो सकते हैं कि हमें मालिक के किसी भगत और प्यारे की संगत मिल जाए, हमारा उसके साथ प्यार हो जाए, हम उसकी भक्ति में लग जाएं। गुरुमुखों की भक्ति के जरिए हम नाम भक्ति पूर्ण कर सकते हैं। गुरु भक्ति नाम भक्ति की पहली सीढ़ी है। गुरु रामदास जी ने कहा था, हर की सेवा सतगुरु पूजो, कर कृपा आप तरावे। यानी सतगुरु की पूजा द्वारा ही परमात्मा की पूजा हो सकती है। गुरु साहब कहते हैं कि सतगुरु भक्ति मुक्ति का दरवाजा है। सतगुरु भक्ति के जरिए ही मुक्ति का दरवाजा खुलता है और हम रूहानी सफर तय करते हैं। नाम के साथ ख्याल जोड़कर मंजिल दर मंजिल फिर अपने घर पहुंचते हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हम बड़े खुशकिस्मत हैं, भाग्यशाली हैं, अगर हमें गुरुमुखों की सोबत प्राप्त हो जाए, उन पर भरोसा और विश्वास आ जाए, उनसे हमारा प्यार पैदा हो जाए।
जगत जीव कहा जाने महिमा, वेद कतेब न जाने मरमा।
आप फरमाते हैं कि दुनिया के जीव महात्मा की संगत और सोबत का फायदा नहीं जानते। वेद शास्त्र संत महात्माओं की क्या महिमा कर सकते हैं, उनके सत्संग और संगत की क्या महिमा कर सकते हैं। उनकी संगत और सोबत तो हमें तीनों गुणों से पार ले जाती है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, गुरु प्रसादी त्रिकुटी छूटे चौथे पद लिव लाई। गुरु प्रसादी जिस चीज का गुरुमुख हमें प्रसाद देते हैं वह किसका प्रसाद है? वह शब्द का प्रसाद है, नाम का प्रसाद है। हम उनकी बख्शिश प्राप्त करके त्रिकुटी से छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं, मन और माया के दायरे से पार चले जाते हैं, हमारी रूह और मन की गांठ खुल जाती है, हम अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाते हैं, वापस जाकर परमात्मा को पहचानने के काबिल बन जाते हैं। इसलिए समझाते हैं कि ना वेद शास्त्र सतगुरु की महिमा कर सकते हैं, ना दुनिया के जीव उनकी बढ़ाई सोच सकते हैं।
ज्ञानी जोगी सब थक हारे, सत गुरु महिमा कोई ना विचारे, ताते सत गुरु शरण पुकारू, आरत उनकी नित प्रतिधारूं।
आप समझाते हैं कि हम सतगुरु की शरण हासिल करना चाहते हैं, उनकी दिन रात आरती करना चाहते हैं, उनसे प्यार करना चाहते हैं, उनके बताए हुए उपदेश पर चलना चाहते हैं। गुरु अमरदास जी कहते हैं, नानक जिनको सतगुर मिलिया तिनका लेखा निबड़िया। जिनको सतगुरु मिल जाते हैं, जिनको सतगुरु अपनी शरण में ले लेते हैं, जो सतगुरु के बताए हुए उपदेश पर चलना शुरू कर देते हैं, उनका कौन सा लेखा खत्म हो जाता है? उनका मरण जन्म का लेखा खत्म हो जाता है, उनका देह के बंधनों से छुटकारा हो जाता है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, हरख शोक का नगर ए किया से उबरे जो सतगुरु शरणैया। ये दुनिया सुखों दुखों की बनी हुई है, इससे छुटकारा किस तरह होगा? जब सतगुरु की शरण हासिल कर लेंगे, उनके बताए हुए उपदेश पर चलना शुरू कर देंगे। उनकी शरण क्या है कि नौ द्वारों में से ख्याल को निकाल कर आंखों के पीछे लाकर शब्द के साथ जोड़ो, मन और माया के दायरे से पार जाकर शब्द में लीन हो जाओ, शब्द रूप हो जाओ। यही उनकी असली शरण है।
आरत करूं प्रेम से जब ही, कुल परिवार तरे मेरा तब ही।
स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि जिनके अंदर सतगुरु का सच्चा प्रेम जाग उठता है, जो सतगुरु पर पूर्ण भरोसा ले आते हैं, वह केवल आप ही नहीं तरते, उनके कुल परिवार भी तर जाते हैं। क्योंकि सतगुरु के प्यारों को देखकर उनके रिश्तेदारों संबंधियों के अंदर भी सतगुरु का प्यार पैदा हो जाता है, और वह भी मालिक की भक्ति मालिक के प्यार में लग जाते हैं। हम संगत और सोबत का बहुत जल्दी असर लेते हैं। अगर हमारे घर में मालिक की भक्ति का वातावरण है, अपने आप हमारे रिश्तेदारों के अंदर, हमारे बाल बच्चों के अंदर मालिक की भक्ति का शौक पैदा हो जाता है, हम भी तर जाते हैं और कुल कुटुंब वाले भी मालिक की भक्ति में आकर तर जाते हैं।
आरत विधि अब करूं सिंगारा, राधा स्वामी मेरे हुए दयारा, राधा स्वामी परम दयाल, करे आरत उन हुआ निहाल।
स्वामी जी महाराज ने बड़ी अच्छी तरह खोलकर अपने उपदेश के बारे में हमें हर पहलू से समझाने की कोशिश की है कि जो कुछ मिलना है वह शब्द या नाम की कमाई से मिलना है। जब भी उस शब्द या नाम की कमाई करने का हमारे अंदर शौक और प्यार पैदा होगा, केवल गुरुमुखों की संगत में जाकर होगा। जिस साधन और तरीके के जरिए हमें मन पर काबू पाना है, वह केवल शब्द या नाम की कमाई है। मन लज्जत का आशिक है, जब तक इसको दुनिया के मोह या प्यार से ऊंचा और निर्मल प्यार नहीं मिलेगा, ये दुनिया का मोह या प्यार कभी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। वह लज्जत जिसको पाकर मन दुनिया का प्यार छोड़ता है, केवल शब्द या नाम की लज्जत है। आप तुक तुक में हमें इस नुक्ते पर लाते हैं कि गुरुमुखों के जरिए शब्द को पकड़ो, नाम को पकड़ो।
आरत विधि अब करूं सिंगारा, राधा स्वामी मेरे हुए दयारा, राधा स्वामी परम दयाल, करे आरत उन हुआ निहाल।